ಲಕ್ಷ್ಮೀಜನಾವಲ್ಲಭಾ ಗಿರಿವರಧಾರೀಯ ಜಯ ಗೋಪಿಜನಾವಲ್ಲಭಾ ಗಿರಿವರಧಾರೀಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರೀ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರೀ ಜಯ ಗೋಪಿಜನಾವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರೀಯ ಯಶೋದನಾಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಾಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರೀ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರೀ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ರೇ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ರೇ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ರೇ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೇ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, Gauranitai, Hari bol tai gora Jaya Jaya Prabhupada 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् श्रीमद्भागवतम् स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक संख्या 55 ताहा स्वपत्युः महाराज निरीक्ष्य आध्यात्मिकीं गतिम् अन्वियुः तत्प्रभावेन अग्निम् शान्तम् इव अर्चिष ता स्वपत्युर्महाराजा ता स्वपत्युर्महाराजा ता स्वपत्युर्महाराजा निरीक्ष आध्यात्मिकीं गतिम् निरीक्ष आध्यात्मिकीं गतिम् अन्युच्च प्रभावेन अन्वियुष्टत्प्रभावेन अग्निं शान्तमिवार्चिषः अग्निं शान्तमिवार्चिषः स्वास्वत्यर्महाराज सौभरी की सारी पत्नियां स्वपत्नियों अपने पति के साथ महाराजा हे महाराजा परीक्षित निरीक्षा देखकर आध्यात्मिक गतिम प्रगति अन्वियुः अनुसरण किया तत्प्रभावेन अपनी
पति के प्रभाव से अग्निम अग्नि शांतम पूर्णतया एकाकार इव सदृश अर्चिशः लप्ते। अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का श्रील प्रभुपाद की चाय। अनुवाद, हे महाराजा परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौभरी मुनि की पत्नियों भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुए। जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शांत शमित हो जाती हैं, तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि पराम गतिम, आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां बलशाली नहीं मानी जाती है, किंतु यदि कोई इतनी भाग्यशाली हो कि उसका पति आध्यात्म विद्या में बड़ा चढ़ा हो और यदि वह अपनी सेवा करती हो तो यदि वह उसकी सेवा करती हो तो उसे भी अपने पति के समान लाभ मिलता है। शौभरी के की पत्नियां अयोग्य थीं, किंतु अपने पति की आज्ञाकारी होने से वे भी उनके साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुई। इस तरह स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारिणी दासी होना चाहिए और यदि पति आध्यात्मवादी हो तो स्त्री को भी वैकुंठ जाने का अवसर स्वयमेव मिल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नमस्कंद के अंतर्गत शौबरी मुनि का पतन शीर्षक छठे अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। उमज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता शिवशिखं। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा, ये अध्याय का ये आखिरी श्लोक है जिसके अंतर्गत कहा गया है, जैसे शौबर मुनि अपना शरीर त्याग किए और वैकुंठ प्रवेश किए, साथ साथ में उनके पत्नियां भी उनके साथ में वैकुंठ प्रवेश किए। तो इधर कहा गया है सबसे पहला ताहा, ताहा का अर्थ है कि उनके पत्नियां, यानी शौबरी मुनि की पत्नियां। शौबरी मुनि की पत्नियों को ताहा करके क्यों संबोधित किया गया है? क्योंकि वो सब जैसे श्री राधा हरि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैं थी, वो सब देख रहे थे कि प्रेजेंटेंस देखे, प्रत्यक्ष रूप देख रहे। ने क्या देखा? उनकी पत्नी की जो चिता है, पति की चिता ऊपर जल रही है और आध्यात्म लोक में वो प्रवेश कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में चल रहा है। तो समय देखिए, अगर किसी का पति का मृत्यु होता है निश्चित रूप में पत्नी को बहुत दुख का अनुभव होता है, लेकिन ये शौबरी मुनि के पत्नियां हैं इस प्रकार भौतिक प्रकार के जो दुख है उसको वो अनुभव नहीं किए। इसलिए ताह स्वपत्युर महाराजा, महाराजा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक आचार्य वर्णन करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित सुनो, तुम्हारा भी वैकुंठ का गमन निश्चित है, तुम चिंता मत करो। इसलिए महाराजा करके संबोधित करते हैं। जिस प्रकार शौबरी मुनि वैकुंठ गमन के मुक्त हो गए, उसी प्रकार तुम्हारा भी मुक्ति निश्चित है, उसमें सरासा भी संदेह नहीं है। क्योंकि ये जो अग्नि है शौबरी मुनि को जला रहा है, वही अग्नि सर्प के रूप में आके आपको जलाने वाला है, उस समय उसका कोई चिंता मत करो आप। क्योंकि आप वो अग्नि आने से पहले, सर्प का तक्षक का सर्प का अग्नि आने से पहले आपका मुक्ति हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज को उत्साह और आश्वासन देते हुए ता स्वपत्युर महाराजा, इसे महाराजा शब्द को उच्चारण करने की जरूरत नहीं था, लेकिन केवल परीक्षित महाराज आपका भी मुक्ति निश्चित है ये बात को स्पष्ट करने के लिए एक आचार्य कहते हैं ये महाराजा शब्द को इस्तेमाल किया गया है। ता स्वपत्न्युर, स्वपत्न्युर महाराजा निरीक्षा, निरीक्षा वो निरीक्षण कर रहे थे। साधारणतः कोई निरीक्षण करता है तो क्या निरीक्षण करता है? शरीर जल रहा है, कोई रोता है मेरा पति चला गया, वो हो गया, ये हो गया, हम बर्बाद हो गए। तंत्रता क्यों रोते हैं? क्योंकि मुझे कौन देखभाल करेगा? अगर मुझे कोई देखभाल करने और मिल जाए मैं रोना बंद कर दूंगी। तो अंततः आसक्ति जो है या प्रेम जो है वो पति या जिससे प्रेम करते उनके प्रति नहीं है। ये दुख का कारण क्या है? मूल दुख का कारण, मुझे इतना दिन संभाला, मुझे इतना देखभाल किया, मुझे उतना सुख दिया, अभी मुझे कौन सुख देगा? अगर मुझे और सुख देने वाला मिल जाए तो अभी रोना बंद कर दूंगी। ये भौतिकवादियों का ये स्वभाव होता है। लेकिन उनकी पत्नियां, शौबरी मुनि की पत्नियां, ये शौबरी मुनि के प्रति अत्यंत आसक्त थी, लेकिन वो आसक्ति आध्यात्मिक स्तर में था। दूसरे शब्दों में शौबरी मुनि का आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से, इसलिए श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, निरीक्षा आध्यात्मिकीं गतिम अन्विहु तत्प्रभावेना। तत्प्रभावेना किसके प्रभाव से? शौबरी मुनि की, जो पिछले श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? तत्र तप्त्वा तपस तीक्ष्णम आत्मदर्शनम तत्प्रभावेना। कौन से प्रभाव से? पिछले श्लोक के जो शब्द है तप्त्वा तपस तीक्ष्णम आत्मदर्शनम। सबसे पहला है तप्त्वा। तप्त्वा का अर्थ है कि उन्हें बहुत सारे दुखों का अनुभव किया, शारीरिक और मानसिक कष्ट को अनुभव किया, स्वेच्छा से अनुभव किया, जिसको तप्त्वा कहा गया है। और साथ साथ में तपस, तपस का अर्थ क्या है इधर? तपस का अर्थ यह है कि केवल भगवान की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति के हेतु उन्होंने बहुत सारे कष्टों को अनुभव किया, बहुत सारे दुखों को अनुभव किया, शरीर को कष्ट दिया, मन को कष्ट दिया, जिसके द्वारा क्या हुआ? आत्मदर्शनम, उनको अपनी जो आत्मा का दर्शन हुआ, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं या मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं मैं, ये बुद्धि नहीं हूं, ये आत्मदर्शनम साथ साथ में आत्मवान, आत्मवान यानी आत्मा जिसके साथ संबंध में है यानी परमात्मा, उनका दर्शन हुआ। इसलिए सवाय अग्निभिर आत्मनाम युयोज्य परमात्मनि, युयोज्य परमात्मनि, जैसे उनको परमात्मा का दर्शन हुआ, आत्मा और परमात्मा का तत्व का दर्शन हुआ, उन्होंने युयोज्य, उन्होंने क्या किया, भक्ति का कार्य किया। तो एक जगह वर्णन किया गया है कि शौभरी मुनि शुरुआत में वो योग ध्यान में लगे हुए थे, लेकिन जैसे परमात्मा प्रकट हुए, उनके परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा का ज्ञान के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, भक्ति करना शुरू किया। इसलिए क्या हुआ, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है इधर, योज्य, योज्य करके अपने आप को नियुक्त किया भक्ति के कार्यों में। तो एक जगह कहा गया है कि निरीक्ष्य माने देखे, क्या देख रहे थे इनकी पत्नियां, केवल चिता को जलते हुए नहीं देख रहे थे, उन्होंने चिता को जलने से पहले जब उनकी पति भक्ति के कार्य कर रहे थे उस समय में भी वो देख रहे थे, वो देखते क्या कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तो पत्नियों के पास ज्ञान नहीं था, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये जितने भी शौभरी मुनि की पत्नियां थी वो राजकन्याएं थी, राजा की कन्या होने के नाते क्षत्रिय में क्या रहता है, उनका तो इतना ज्ञान नहीं रहता क्षत्रिय कन्याओं में, उनको यही ज्ञान रहता है किस प्रकार हम इंद्र तृप्ति प्राप्त करें, किस प्रकार हम सुख से अपना जीवन यापन करें, किस प्रकार अपने साम्राज्य को बढ़ाए, उसी प्रकार की इच्छाएं रहती है। क्षत्रिय जो हैं उनके अंदर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से हमेशा उनके अंदर भौतिक इच्छा ज्यादा रहता है, वैसे ऋषि कन्याएं नहीं थी और ना वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, तो ये कन्याएं इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास एक ही अच्छा गुण था कि हमारी पति जो है वो महान आत्मा है, उनका सेवा निश्चित रूप में हमको करना है, और उनका सेवा के बिना हमारा और कोई जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हमको नहीं मालूम वैकुंठ क्या होता है, हमको क्या मालूम वह आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम, इतना मालूम है कि अगर अपने पति को सेवा करेंगे तो हमको अच्छा गति प्राप्त होगा, केवल इतना ही ज्ञान था उनके पास। तो इसलिए कहा गया है निरीक्षा, उनकी पत्नियां केवल वो चिता को जलते हुए नहीं देखा, वो चिता को जलने से पहले उनकी पति किस प्रकार भक्ति का कार्य कर रहे थे उनको निरीक्षण करते हुए उनकी सेवा कर रहे थे। तो ये निरीक्षक शब्द का और एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, निरीक्षा आध्यात्मिक गति, आध्यात्मिक गति को देख पाए, ये क्यों जो देख पाए, तत् प्रभावेन अनव्यूस, ये तद्गति अनव्यूह, ये जो शब्द का अर्थ है कि पति का सेवा यानी उनके अनुगत्य में चलने के प्रभाव की वजह से वो देख पाए। एक आचार्य का कहना यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग कर रहा है, तो शरीर त्याग करने के बाद कहाँ गया ये दूसरे को कैसे मालूम पड़ेगा, किसी को नहीं मालूम पड़ता है, हो सकता है नरक में जाए, हो सकता है कोई ऊपर की योनियों में जाए, किसको क्या मालूम, अगला मनुष्य जन्म प्राप्त करे, ये मुक्त हो गए, उन्होंने उनको मुक्ति प्राप्त हुआ, ये कैसे मालूम है, कैसे दिखाई पड़ता है। ये इन स्त्रियों में, इन शौभरी मुनि की पत्नियों में इतना शक्ति आ गया था, ये शक्ति इतना शक्ति आ गया था उनको दिखाई पड़ रहा था, क्या दिखाई पड़ रहा था, उनकी पति ने आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया, उनकी पति है आध्यात्मिक गति, इतना साधारण चीज नहीं है, दूसरों की भक्ति को पहचानना या दूसरों की गति को कहाँ गए ये पहचानना ये साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है, इट इज नॉट ईजी थिंग कि हम लोग ठीक है ये इतना अच्छा भक्त है और ये इतना अच्छा भक्त नहीं है या पता नहीं कहाँ गए मृत्यु के बाद पता नहीं कहाँ गए, ये पहचानना जो है साधारण चीज नहीं है, इट इज नॉट सच ए ईजी थिंग। वो वही व्यक्ति पता कर सकता है जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो इधर उनकी पत्नियों में इतना सुंदर दृष्टि आ गई थी, इतना ज्ञान आ गया था, उनको मालूम पड़ा कि उनकी पति जो है आध्यात्मिक गति को प्राप्त किए। ये क्यों प्राप्त हुए, इसका कारण क्या है? अनव्यूहु, क्योंकि उनकी श्रद्धा और उनकी जो भक्ति, उनकी जो सेवा है उनकी पति के प्रति, उसके वजह से। ये स्वभाव होता है कि मान लीजिए आपने किसी से बहुत प्रेम किया, तो वो प्रेम की प्रभाव और सेवा की प्रभाव से वो व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, वो एक प्रकार का इंट्यूशन से मालूम पड़ जाता है। ये एक एक इवन भौतिक स्तर में होता है। मान लीजिए भौतिक स्तर में आपने किसी से प्रेम किया, या किसी से बहुत लगाव है, या किसी से बहुत सेवा करते हो, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कहाँ जा रहा होगा, तो वो सब चीज़ एक प्रकार का इंट्यूशन से ये मालूम पड़ जाता है। ये भौतिक जगत में देखा गया है। हमको भी याद है कि बचपन में, या मैं क्या कर रहा था, क्या क्या कहाँ खेल रहा था, वो सब चीज़ें घर में आने के बाद मेरी माँ बोल देती, तुम इधर था क्या, तुमको कैसे मालूम, तो मालूम पड़ जाता है। मतलब बहुत आसक्ति होता है माँ पुत्र, माता के पुत्र की बहुत आसक्ति होता है। ये बहुत सूक्ष्म विद्या है, वो जो बहुत सेंसिटिव होते हैं पहचान सकते हैं। मान लीजिए आप भी बहुत किसी से प्रेम किए, समझ लीजिए जैसे गुरु भी शिष्य से बहुत प्रेम करते हैं, मान लो शिष्य बोले ना, पहले गुरु को मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति जो है, तो तुम कहाँ था, ये तुमने गड़बड़ किया। मालूम पड़ जाता है, ये दिव्य दृष्टि है। आध्यात्मिक स्तर की बात थोड़ी, इवन भौतिक स्तर में भी इस प्रकार होता है, क्योंकि उनकी जो अनव्यूहु, उनका अत्यंत प्रेम उनके पति के प्रति, आसक्ति के प्रति, ये उनको इस प्रकार की भावनाएं। इधर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिलता है। क्या शिक्षा मिलता है कि जैसे भगवद्गीता में भगवान भी इस बात को कहते हैं, योगारूढ़, जो योगारूढ़ होता है यानी योग के स्तर में, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत आरूढ़ हो जाता है, उनके लिए जो है त्याग जो है वही आध्यात्मिक प्रगति का कारण होता है। लेकिन योगारुरुक्षः, शुरुआत की योग की स्थिति में, शुरुआत में कर्म कारण मुच्यते, उनके लिए आसक्त होना, आसक्त होके कार्य करना, ये मुक्ति का कारण होता है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में इस श्लोक में लिखते हैं, या इस श्लोक की तात्पर्य में, स्त्रियां जो हैं आध्यात्मिक प्रगति में इतना निपुण नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव की वजह से, उनका शारीरिक और मानसिक स्वभाव की वजह से आसक्त होना उनका स्वभाव है, किसी के प्रति या कोई वस्तु के प्रति आसक्त होना उनका स्वभाव है। तभी जब तक कोई अनासक्ति को उत्पन्न नहीं करता, तो आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तब स्त्रियों का क्या उपाय है, उनको मुक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है? वही आसक्ति उनका उपाय है, वही कर्म, कर्म कारण मुच्यते, योगारुरुक्ष कर्म कारण मुच्यते, वही उनका उपाय है। क्या उपाय? कोई आध्यात्मिकता में बड़े छड़े व्यक्ति, यानी जो उनकी पति हैं या जैसे प्रभु योगारूढ़, जो मुक्त व्यक्ति है, जो अनासक्त व्यक्ति है, वो अनासक्त व्यक्ति से आसक्ति उत्पन्न करना और उनका सेवा करना ही उनका एकमात्र रास्ता है। तो इसलिए कहा गया है, पति को पत्नी से अनासक्त होना चाहिए और पत्नी को पति से आसक्त होना चाहिए। लेकिन कलयुग में ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है। कलयुग में क्या होता है, पति जो है पत्नी से आसक्त है और पत्नी जो है पति से अनासक्त है। ये कलयुग का लक्षण है। लेकिन आध्यात्मिक या सिस्टम के अनुसार पहले जमाने में, या इवन प्रभुपाद जी ने शुरू किया, पहले प्रभुपाद जी के पहले कोई भी आचार्य ने स्त्रियों को दीक्षा नहीं दिया है, नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष को दीक्षा दिया जाए, वो पुरुष जो है उस परिवार का गुरु है, तो उधर के उस परिवार में स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो सब उस पति के मार्गदर्शन में वो अपना आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। उनकी पति का सेवा करते हुए उनका आध्यात्मिक प्रगति अपने आप होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि अभी इस कलयुग में, खास करके अमेरिका में, अन्य जगह, परिवार नामक चीज तो है ही नहीं, परिवार नामक चीज तो है ही नहीं। तो एक बार एक प्रोग्राम चल रहा था, तो एक भक्त, एक ऐसे ही एक व्यक्ति आए प्रभुपाद जी से, उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी आपने स्त्रियों को दीक्षा क्यों दिया, क्योंकि कोई शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है स्त्रियों को दीक्षा दिया जाता है, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, कोई स्मृति में वर्णन नहीं है, आपने स्त्रियों को दीक्षा क्यों दिया? प्रभुपाद ने कहा मैंने नहीं दिया। तो ये तो घबरा गया, फिर ये सब कौन है, पीछे सब लोग एकदम जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, ये सब आपके ही शिष्य हैं। तब प्रभुपाद जी को वापस पूछा, ये सब कौन है? पापा ने कहा, नो, मैंने तो स्त्रियों को दीक्षा नहीं दिया। तब वापस उन्होंने पूछा कि फिर ये सब कौन है, क्यों तो कंफ्यूज हो गया, ये सब आपकी शिष्य है, आपने तो दीक्षा दिया उनको। तो प्रभुपाद ने कहा, हैव यू बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हो? उन्होंने कहा, नहीं, अमेरिका में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, उधर सब जानवर है। मैंने स्त्रियों के नहीं बल्कि जानवरों को दीक्षा दिया। अभी क्या कहोगे बोलो। तो ये प्रभावेना, तत् प्रभावेना, यानी आध्यात्मिकीं प्रभावेना, प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक प्रगति का या आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव से, उनकी प्रभाव से क्या हुआ, जानवर जैसे लोग उनका भी क्या हुआ, उद्धार हो गया। तो शौबरी मुनि का आध्यात्मिक बल की प्रभाव से तो क्या हुआ, उनकी पत्नियों को उद्धार हुआ, क्योंकि उन्होंने उनका सेवा किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसा पंचरात्रिक शास्त्र में कहा गया है। दीक्षा के संबंध में जब दीक्षा दिया जाता है, ये दीक्षा अस्तित्व में एक विवाह है। किसके साथ विवाह है? गुरु के साथ विवाह है। एक शिष्य जो है वो गुरु के साथ विवाह करता है, जैसे एक स्त्री एक पुरुष के साथ विवाह करती है, उस समय पुरुष का विवाह नहीं होता है। कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति आया मेरे पास, बोला प्रभु जी मेरा शादी हो रहा है, मेरा विवाह हो रहा है। मैंने कहा, विवाह तुम्हारा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा सोचोगे तुम गए काम से। विवाह जो है स्त्री का होता है पति के साथ, पुरुष के साथ, वैसे ही दीक्षा जो है शिष्य का होता है, दीक्षा जो है गुरु का नहीं होता है। गुरु जो है उस दिन क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं। वो जो सेरेमनी है वो विवाह के सेरेमनी के बराबर है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म को पालन करना चाहिए एक पत्नी को, और एकदम एकनिष्ठ होके एकांत भाव से एक है कुरुनंदना ये भाव से जब जैसे सेवा करना चाहिए पति को, उसी प्रकार शिष्य को भी गुरु का सेवा करना चाहिए। जैसे एक पत्नी पति का सेवा करती है, एक पतिव्रता पत्नी पति का सेवा करती है, उसी प्रकार एक शिष्य को क्या करना चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए। ऐसा सेवा करने से तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे मन में या हमारे अंदर योग्यता नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की, मुक्ति प्राप्त करने की, कोई बहुत सारा अयोग्यताएं हैं, वो सारी अयोग्यता क्या हो जाता है, अपने गुरु का आध्यात्मिक बल का जो अग्नि है उस अग्नि में ये सब नष्ट हो जाता है। ये जितने भी हमारा अयोग्यता है वो सब नष्ट हो जाता है, और इतना योग्यता हो जाता है जो स्थान को गुरु ने प्राप्त किया वही स्थान को शिष्य प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार इधर कहा गया है, जिस स्थान को शौबरी मुनि ने प्राप्त किया उनकी पत्नियों ने भी प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? केवल एक ही कारण की वजह से, अनव्यू, उनके अंदर अत्यंत आसक्ति प्रेम होने की वजह से उनकी गुरु उनकी पत्नी पति के प्रति। वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि मैं हमारे पति तो वैकुंठ जा रहे, हम इधर रह के क्या करेंगे, हम भी उनके साथ जाएंगे। तो एक जगह आचार्य ने कहा, वो सारे पत्नियों ने सती किया। सती का अर्थ क्या है, उसी अग्नि में प्रवेश करना। तो एक उदाहरण दिया गया इस बात को समझाने के लिए, एक दृष्टांत दिया गया है। क्या है वो दृष्टांत? अग्निम शांतम इवार्चिषः, आखिरी लाइन में आता है, अग्निम शांतिम इवार्चिषः। इसका अर्थ क्या है, अग्नि शांत हो जाता है। जैसे अग्नि शांत हो जाता है अग्नि की ज्वालाएं भी शांत हो जाता है। एक आचार्य लिखते हैं, निरिंधनम अग्निम शांतिम इव अर्चिषः। निरंधनम का अर्थ क्या है, जब ईंधन समाप्त हो जाता है, यानी जब उसका जो लकड़ा है, लकड़ा मान लीजिए लकड़ा जल रहा है, वो जलते जलते क्या होगा, लकड़ा का जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे लकड़ा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है या ईंधन समाप्त होता है, अग्नि जो है वो समाप्त हो जाता है। और जैसे अग्नि समाप्त होता है अग्नि के साथ साथ ज्वालाएं भी वो समाप्त हो जाता है, यानी ज्वालाएं भी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार इनकी जो पत्नियां हैं शौबरी मुनि, शौबरी मुनि को अगर अग्नि के बराबर तुलना किया जाए, शौबरी मुनि की पत्नियां इस अग्नि के ज्वालाएं के बराबर थे। जैसे ऐसे शास्त्र वर्णन किया गया, अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा देवी, वो स्वाहा देवी कोई और नहीं है, इसकी ज्वालाएं होती हैं वो अग्निदेव की पत्नी है। तो यानी ये जो ज्वालाएं हैं वो अग्नि के ऊपर हमेशा आधारित होता है। ये ज्वालाओं में जो प्रकाश है वो किसके वजह से है? अग्नि की वजह से है। उसी प्रकार प्रत्येक पत्नी को अपने पति का अस्तित्व को जानना चाहिए कि मेरा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मेरा पति है। मेरा भक्ति तभी चलेगा जब मेरा पति का भक्ति चल रहा है। जितना मेरा पति में आध्यात्मिक प्रगति होगा उतना ही मेरा भी आध्यात्मिक प्रगति होगा। तो ये भाव इधर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से व्यक्त हुआ है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, शौबरी मुनि, हियर इट इज क्लियरली सेट द वाइव्स ऑफ शौबरी मुनि ऑल्सो एंटर्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर हस्बैंड। दे वर अनफिट बट बिकॉज दे आर फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ देयर हस्बैंड्स दे ऑल्सो एंटर्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विथ हिम। भले क्योंकि वो शौबरी मुनि के अनुगत्य में चल रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, वो लोग भी क्या किए? आध्यात्मिक धाम को वो प्राप्त किए। Thus a woman should be faithful servant of her husband। इसलिए एक पत्नी को अपने पति का एक सेवक होना चाहिए। एंड सर्जन इफ द हस्बैंड इज स्पिरिचुअली एडवांस द वुमन ऑटोमेटिकली गेट द अपॉर्चुनिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर पति आध्यात्मिक क्षेत्र में वो प्रगतिशील है, उन ऐसी पति का सेवा करने के द्वारा तो क्या होगा, इनके स्वयं स्वतः उस पत्नी का भी आध्यात्मिक प्रगति हो जाता है। तो ऐसी बातें जब शास्त्र में लिखा गया है तो कुछ आजकल के माताओं को बहुत खराब लगता है, ऐसा क्यों लिखा गया है? स्त्री वैश्यस्तता शूद्र, क्या हम कम है? क्या हम किसी से कम नहीं? हम भी बहुत आध्यात्मिक प्रगति में हम भी अग्रसर है। बड़े बड़े उदाहरण लेंगे तो शास्त्र में बहुत सारे महान महान लोगों को उदाहरण लेते हुए तो नारी मुक्ति आंदोलन को शुरू करेंगे, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। तो आध्यात्मिक ये जो आजकल चलता है वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, तो एक बार इसी के ऊपर चर्चा कर रहा था, किसी ने कहा वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा कि वो किससे मुक्त होना चाहते हैं? तो मैंने कहा सीधा सीधा हम कहना चाहते हैं अपने पति से मुक्त, पति पत्नी का बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन वो मुक्ति जो है वो बर्बादी की ओर है। यानी नियम कानून से या गृहस्थ के जीवन के बंधन से पत्नी को मुक्त होने का जो प्रयास है, ये कभी भी शास्त्र में कहीं कोई भी शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है। कोई भी शास्त्र में कोई अगर स्त्री बोलती है कि बस मैं परिवार से तंग आ चुकी हूँ, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, सब कुछ छोड़ के जाना चाहती हूँ, इसका अर्थ क्या है? वो उनके अंदर अज्ञान है। जो पति कहती है मैं अपने पति से आसक्त हूँ, बच्चे से आसक्त हूँ, आसक्ति स्त्री का स्वभाव है, अनासक्ति स्त्री का कभी भी स्वभाव नहीं हो सकता है। नेवर देर कैन बी एनी डिटैचमेंट इन ए वुमन, लेकिन द सेम अटैचमेंट, वही आसक्ति जो है वो हमारी उस स्त्री का मुक्ति का कारण बन सकता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, कपिल मुनि स्वयं कहते हैं कि क्या कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः तयैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जो ये आसक्ति जो है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति जो है, हमारा बंधन का कारण है। लेकिन वही आसक्ति अगर अध्यात्म में एक क्षेत्र में बड़े चढ़े व्यक्ति के साथ में लगाया जाए तो वही आसक्ति हमारा मुक्ति का कारण बन सकता है। तब कोई प्रश्न पूछ सकता है, कोई माता प्रश्न पूछ सकती है, अगर पति आध्यात्मिक क्षेत्र में ना हो तो फिर भी, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आपकी आसक्ति के प्रभाव से उनकी प्रगति होगा और उनकी प्रगति से आपका भी प्रगति होगा। उनकी आपकी आसक्ति के वजह से तो क्या होगा, आपकी आसक्ति के प्रभाव से उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगा। भले ही अभी दिखाई पड़ रहा वो भक्ति में रुचि नहीं लेते, और आप थोड़ा भक्ति में रुचि लेते हैं, लेकिन आपकी भक्ति में जो रुचि है, साथ साथ में आपकी उनके प्रति आसक्ति है, वो प्रभाव की वजह से वो व्यक्ति भी निश्चित रूप में उनका प्रगति होगा। ऐसा प्रगति होगा कुछ समय के बाद बोलेंगे अरे आप इतना प्रगति कर लिए। ये अनेकों अनेकों भक्तों के जीवन में देखा गया है। शुरुआत में माता है प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में भी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में, ये स्वाभाविक है कि जहाँ सत्संग होता है वो स्त्रियाँ ज्यादा रुचि लेती हैं, क्योंकि सरल होने की वजह से उनका भाव, सरल हृदय होने की वजह से वो जो भी बोलेंगे उसको मान जाते हैं। तो तो इसलिए सत्संगों में ज्यादा स्त्रियों का संख्या ज्यादा रहता है, तो जल्दी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। और हमेशा उनका कंप्लेंट रहता है कि हमारे पत्नी नहीं करते, बच्चे नहीं करते, बस मैं छोड़ना चाहती हूँ, ऐसा सब बहुत सारे बातें कहते हैं। लेकिन ये शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। ये किस प्रकार उसी घर में रहते हुए जो भक्ति नहीं करते उनके प्रति आसक्ति बनाते हुए आपकी आसक्ति के द्वारा उनके अंदर आपके अंदर जो भक्ति उनको देने के द्वारा, तो क्या होता है कुछ समय के बाद, 10 साल 2 साल इवन 10 साल के बाद आप देखोगे उनकी पतियां जो एकदम विरुद्ध थे वही आध्यात्मिकता में इतना प्रगति कर देते। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक पुरुष जो है वो स्त्री के बिना वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, लेकिन कोई भी स्त्री कोई भी अपने पति के साथ में लिए बिना भक्ति करना चाहती है वो असंभव है। ऐसा कोई शास्त्र में ऐसा उदाहरण हमको प्राप्त नहीं होता है। ये हमको एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक शिक्षा इधर से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। कोई हाँ ये आत्महत्या नहीं कहा जाता है उसको, ये सती कहा जाता है। शास्त्र में सती का उल्लेखन किया गया है, सती किया कहा है। ये शास्त्रोक्त बात है, ये शास्त्रोक्त बात है, ये इसमें कोई आत्महत्या नहीं है। लेकिन कलयुग में ये वर्जन किया गया है, इसको इतना ये नहीं दिया गया है, क्योंकि कलयुग में उस प्रकार की वातावरण नहीं है। तो ये कुछ बातों को कलयुग में स्वीकार नहीं किया जाता। मनुष्य संहिता में इस बात को कहा गया है कि सती होना ये पतिव्रता का धर्म है, और कलयुग में उसको लागू नहीं करते। हाँ वही शौबरी मुनि वही है, उनका तो पहले के श्लोक में, कल का श्लोक में आया। शौबरी मुनि का चरित्र इस प्रकार है, तो उन्होंने मर्यादा उल्लंघन किया था, वो अपराध हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मैं गरुड़ को भी शिक्षा दे सकता हूँ। गरुड़ भगवान के पार्षद है। शौबरी मुनि को है साधक है, एक साधक को पार्षद के ऊपर, पार्षद का गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। शौबरी मुनि ने सोचा कि गरुड़ क्या कर रहे हो तुम, मछलियों को खा रहे हो, कहा आप इधर आओगे तो आप मर जाओगे। तो वो अपराध के कारण शौबरी मुनि वो एकदम ध्यान से यमुना में बैठ के वो मछलियों को देख रहे थे, ध्यान कर रहे थे। जब उन्होंने मछलियों को देखा, एक मछली को देखा, क्या देखा, दो मछलियां संग कर रही है, तो उनके मन में आया तो मुझे भी गृहस्थ बनना चाहिए, मुझे भी संगति प्राप्त करना चाहिए, मुझे भी स्त्रियों का संग चाहिए। तो शौबरी मुनि गए राजा के पास, राजा का नाम क्या मुझे मालूम नहीं, याद नहीं। राजा के पास गए, उन्होंने कहा कौन सी कन्या चाहिए, तो उन्हें कहा सब कन्या ने सोचा, शौबरी मुनि तो वृद्ध थे, अपने आप को पूरा युवावस्था बना ले अपनी योग शक्ति के द्वारा। जब सारे कन्या आसक्त हो गए, बोले कि हम सबको करना है, शौबरी मुनि ठीक है सबसे विवाह कर लूंगा। तो उन्हें गृहस्थ जीवन एकदम अच्छा बिताया, बिताते बिताते एक एक से 100 पुत्र हुए। कितना पुत्र हो गए, 50,000 पुत्र हो गए, 5,000 पुत्र हो गए। जैसे 5,000 पुत्र हो गए तब मालूम पड़ा मैंने क्या गलत किया। तो ये अपराध का दंड है, जब अपराध का दंड भोगने के बाद फिर वापस उनको वही हुआ, मुझे इन सबसे क्या लेना है, उसको छोड़ना चाहिए। तब वानप्रस्थ लिए, वन में चले गए, वेंट टू फॉरेस्ट। लेकिन उनकी पत्नियां भी उनके साथ वन में गई, उनके साथ में वन में गए। तो जैसे उनके साथ वन में गई तो शौबरी मुनि की निरीक्षा, वो लोग देख रहे थे, अरे हमारे पति तो पूरा परिवर्तन हो गया उनका, क्या कार्य कर रहे, भक्ति कर रहे। तब वो लोगों ने इस प्रकार की स्टोरी,
यहाँ पर पश्चात प्रभाव के कारण दुनिया देखने में
भक्ति में आगे निकलने का अर्थ क्या है? हाँ, तकलीफ है विमुक्त मानस विमुक्त मानस मान लेते हैं कि मैं भक्ति में आगे विमुक्त मानस का अर्थ क्या है? मैं भक्ति में मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, मैं मुक्त हो गई हूँ। हाँ, ऐसा सोचना तो मुक्त जीव का अगर भक्ति में आगे प्रगति किया हुआ व्यक्ति का कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है नम्रता। सबसे पहला लक्षण है नम्रता। तो नम्रता मतलब क्या है? गुरु की आज्ञा को उनको स्वीकार करना चाहिए। और जब गुरु की आज्ञा को स्वीकार करेंगे वो नम्रता है। तो ये नम्रता नहीं है तो क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। कलयुग का प्रभाव है, वही भक्ति सोचते हैं कि मैं बहुत अग्रसर हो चुके हूँ, वो कर चुकी हूँ, ये कर चुकी हूँ, मैंने ये किया, मैंने इतना किया। ये सब बाह्य है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? बाह्य। मूल अंतरंगी गुण क्या है भक्ति में? प्राण स्नेहिना तरोरिव सहिष्णुना। वो सहिष्णुना सहन शक्ति जो है वो भक्ति में प्रगति का लक्षण है। अगर सच में प्रगति में प्रगति किया है तो ये दो लक्षणों को दिखाइए। जब ये दो लक्षणों को दिखाएंगे तब हम मानेंगे कि आप जो है। ये दो लक्षणों को कैसे दिखा सकते हैं आप? जब पति के अनुगत में रहो। भले वो पति आपका शराबी है, भले रोज आके मारता है, भले वो पति जो है वो मांस खाता है, पत्नी को बोलता है दीक्षित पत्नी है फिर भी बोलता है कि मांस पका के खिलाओ, फिर भी उनको नम्र होना चाहिए। उनकी नम्रता और उनकी सहनशीलता के बल से उनकी पति का हृदय को परिवर्तन करना, ये सबसे महान कार्य होता है। सच थिंग ये, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनकी नित्यानंद रूप अपनी नम्रता से जगाए माता का हृदय परिवर्तन किया है कि नहीं? अभी कुछ भी कहे, हर पत्नी को मालूम है पति को कैसे वश में करने की मालूम है। वो नहीं करना चाहती इसका अर्थ है कुछ तो गड़बड़ है। एवरी वुमन नोज उनके पति का वीक पॉइंट क्या है, उनको कैसे करना है। तो एक बार ऐसा कोई परिवार था तो मैंने इस बात को कहा कि जब उन बहुत कंप्लेंट किया एक मंत्री ने, तो ये नहीं करते मंदिर नहीं आते, जप नहीं करते, वो नहीं करते। मैंने कहा कि आपने उनको समझाया, समझा के आपने छोटे फ्लैट में रहते थे, बड़ा फ्लैट खरीदवाया उनसे, उसके लिए आपके पास वो चतुरता है और आपने उनको ये गुल पिला के अनेकों अनेकों काम लेती हो उनसे, ऐसे ही भक्ति में भी काम लो, वो ऐसे उनको लगाओ, उसमें वही बुद्धि लगाओ। तो एवरीवन नोज हाउ टू कंट्रोल हर, ये गृहस्थ लोग ज्यादा जानते हैं। हाँ हाँ, तो लोग प्रश्न पूछते हैं, साधारणतः ऐसा प्रश्न आता है कि शास्त्र में कहा गया है स्त्रियों के पास कम बुद्धि है, ऐसा क्यों कहा गया? अभी देखते हैं कि सब लोग एकदम यहाँ बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, है कि नहीं? हमारे क्लास में पहला चार रैंक लड़कियों को आता था। हाँ, बिजनेस में भी हर जगह हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो वही शास्त्र में कहा गया है कि हाँ, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चार वर्णों में शूद्र के बुद्धि अलग होता है, वैश्य का बुद्धि अलग होता है और क्षत्रिय का बुद्धि अलग होता है, ब्राह्मण की बुद्धि अलग होता है। एक ब्राह्मण है, समझ लीजिए ब्राह्मण की बुद्धि है, अगर उसको वैश्य का कार्य दिया जाए तो ऐसा लगता है क्या मूर्ख है। वही ब्राह्मण को मूर्ख कहा जाता है, क्यों? क्योंकि एट द वैश्यिक लेवल, वैश्य के स्तर में क्योंकि कॉम्पिटिशन अलग है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको फुटबॉल दिया जाए, अरे कुछ नहीं है क्या खेलता है, जो फालतू खिलाड़ी है। लेकिन क्रिकेट में आओ, क्रिकेट फील्ड में आओ, दो दिखाएगा। एट द लेवल ऑफ at the brahminical level of intelligence, उस स्तर में ब्राह्मणिकल स्तर की बुद्धि के अंतर्गत स्त्रियों की बुद्धि कम होता है, क्योंकि ब्राह्मण का बुद्धि का अर्थ क्या है कि सत असत के बीच में भेद को देखना, यह ब्राह्मण की बुद्धि है। स्त्रियों में ये सत असत के बीच में व्यत्यास या उसकी भेद को देखने की बुद्धि कम रहता है। जब शास्त्र में कहा गया स्त्रियों की अंदर बुद्धि कम है, क्या किस दृष्टिकोण से कहा गया है? ब्राह्मणिकल इंटेलिजेंस इज लेस, लेकिन शूद्राइक इंटेलिजेंस इज मोर। यानी उनको जैसे आप एक कपड़ा दो, पति को दो इसको फोल्ड करो, पत्नी को दो इसको फोल्ड करो, इसको वो ऐसा फोल्ड करेंगे आपको लगता है क्या बनाया, वो पति बनाता रहेगा कुछ तो निकल जाए, उसको फोल्ड नहीं कर सकता वो, है कि नहीं, वो नहीं कर पाएगा। तो इन डीलिंग विथ मैटर, इन मैनिपुलेटिंग मैटर, वुमेन आर एक्सपर्ट। मान लो आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है अपने भौतिक क्षेत्र में डीलिंग विथ मैटर, उसके पीछे एक पत्नी है उसको आगे बढ़ा रही है, इसलिए भौतिक स्तर में क्या कहा जाता है, देयर इज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज सक्सेसफुल वुमन, क्योंकि भौतिक क्षेत्र में। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज सक्सेसफुल वुमन। हिंदी में बोलना मुश्किल होगा, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। एट द ब्राह्मणिकल लेवल देयर इंटेलिजेंस इज लेस, एट द शूद्राइक लेवल इंटेलिजेंस मोर। वैश्य के स्तर में भी स्त्रियों का बुद्धि ज्यादा चलता है, दे आर वेरी एक्सपर्ट। इसलिए जो ट्रेडिशनल वैश्य परिवार में पुरुष को पैसा संभालने का जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है, वो जो चाबी है तिजोरी किसके पास रहता है, स्त्री के पास रहता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, उनको मालूम है कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं खर्च करना है। तो इन द वैश्विक लेवल देयर इंटेलिजेंस इज मोर, एट द क्षत्रिय लेवल ऑल्सो इंटेलिजेंस इज मोर, ओनली एट द ब्राह्मणिकल लेवल। आप देखिए रुक्मिणी का लेटर में प्रभुपाद जी लिखते हैं, रुक्मिणी जो है वो क्षत्रिय परिवार में आती है, इसलिए कृष्ण को बता रही है, प्लान बता रही है मुझे कैसे अपहरण करना है। हाँ, वो दो ऑप्शन देती है, आप गुप्त रूप में आइए लेकिन साथ साथ में सेना को भी लाइए, ऐसा प्लान कौन दे सकता है, ठीक है नहीं। शिशुपाल को भी मार खा गया, हाँ रुक्मी भी मार खा गया, ये कृष्ण को रुक्मिणी ने एडवाइस दिया ऐसा मुझे अपहरण करो। तो एट द ब्राह्मणिकल लेवल देयर इंटेलिजेंस इज लेस, नॉट एट द अदर लेवल, ठीक है। संतराष्ट्रीमद भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।